जनमेजय ने पूछा कि इतनी सब की बातें सुनने के बाद दुर्योधन ने कुछ भी नहीं कहा? कहना ही ये सब बातें सुनने के बाद दुर्योधन खड़ा होकर कृष्ण से कहने लगा, केशव सभा में आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। आप सदाई पांडवों का गुणगान करते हैं, पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, विशेष रूप से मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, तो क्या आप बलाबल का विचार करके सर्वदा मेरी निंदा ही करते रहेंगे? मैं देखता हूं आप विदुर जी, मेरे पिताजी आचार्य कृप, पितामह भीष्म, सारे के सारे मिलकर मेरे पर दोष लाद रहे हैं। मैंने तो खूब विचार करके देख लिया है, मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा मेरे अंदर दोष दिखाई नहीं देता है। मैं सर्वथा निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग शायद द्यूत क्रीड़ा की बात करेंगे, लेकिन आप सोचो क्या मैंने उनको हाथ पकड़ करके जुआ खिलाया था? पांडव लोग अपने ही शोक से जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए और उसमें मामा शकुनी ने अपना राज्य जीत लिया, उनको वन में जाना पड़ा। क्या हमने जुआ जीतने के बाद शर्त लगाई या पहले शर्त लगाई? हमने शर्त पहले लगाई थी, हमने क्या ढगा? यदि जुए में वो जीत जाते तो क्या हमको आप यहां महलों में रहने देते? मेरा क्या अपराध है जो हमारे साथ बैर ठान कर भी हमारे से विरोध करते हैं? शौकीन जुआ के खेलने की शौकीनी की आदत तो उनकी, और दोष आप हमारे पर लादते हैं। हम जानते हैं पांडवों में हमारा सामना करने की शक्ति नहीं है। हमने पांडवों के साथ कितना सद्बर्ताव किया है, आप में से किसी ने भी एक शब्द नहीं निकाला कि हमने 12 वर्ष के वनवास में कभी सेना लेकर पांडवों पर आक्रमण किया क्या? हम चाहते तो उनको कभी अंदर ही अंदर मार सकते थे, वो तो 5 ही थे, सेना नहीं थी। लेकिन नहीं, हमने सद्बर्ताव किया और वे अपना समय पूरा करते, हम राज्य मांगते हैं और सेना इकट्ठी कर रहे हैं और युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, और आप लोग हमको धमकियां देने आए हैं? हम उनके भयानक कर्मों को देखकर या आप लोगों की भीषण डरावनी बातों को सुनकर कभी भी डरने वाले नहीं है? कृष्ण, हमें तो ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं दिखता जो युद्ध में हमको जीत सकता हो, इतनी हमारे अंदर शक्ति है। भीष्म चाहे कुछ भी कहे, द्रोण चाहे कुछ भी कहे, कृपाचार्य चाहे कुछ भी कहे कि ये हमारी बात नहीं मानता तो हमारा बल इसमें कैसे मिलेगा, पर आप शक्ति के ऊपर विचार करो, इनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? ये अभी परशुराम जी महाराज आए, भीष्म के गुरु है, साक्षात अवतार सुना है, परंतु भीष्म ने इनके भी छक्के छुड़ा दिए थे। स्वधर्म का पालन करते हुए हम यदि युद्ध में काम आ गए तो बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग मिलेगा, ये तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। युद्ध होने से सर्वनाश होता है, ये तो सदियों से होता आया है। सर्वनाश तो युद्ध में होता ही है, पर क्षत्रिय मरने के बाद जाता कहां है? स्वर्ग में। ये तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। इस प्रकार यदि हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उद्योग करना पुरुष का धर्म है। ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाए किंतु उसे झुकना नहीं चाहिए। और फिर मुझ जैसा वीर जो अपने धर्म के ऊपर चल रहा है, किसी को कुछ वो इस प्रकार से झुक जाए, असंभव। यही क्षत्रियों का धर्म है और यही मेरा मत है। पिताजी, आप बार बार आधा राज्य बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ का आधा राज्य आपने पहले दे दिया था, यह हस्तिनापुर का ही राज्य था, हमने किसी भी प्रकार से उसे प्राप्त किया है, तो मेरे जीते जी वो इस राज्य को वापस नहीं ले सकते। आप लोगों को सोचना चाहिए, मैं हस्तिनापुर की सीमाओं को बढ़ा रहा हूं, आपने घटाया और मैंने बढ़ाया। हस्तिनापुर के आपने टुकड़े किए और मैंने उसको वापस हस्तिनापुर में मिलाया। मेरी बाल्यावस्था में अज्ञान या भय के कारण पांडवों को राज्य मिल गया था, अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। केशव, जब तक ये दुर्योधन जीवित है तब तक पांडवों को इतनी भूमि तो क्या सुई की बारीक नोक के छिद्र के बराबर भी मैं पृथ्वी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान कृष्ण की त्योरी चढ़ गई, देखते रहे दुर्योधन को। फिर उन्होंने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, दुर्योधन यदि तुम्हें वीर सैया की इच्छा है तो कुछ दिन अपने मंत्रियों सहित धैर्य धारण करो। तुम यदि युद्ध में मरना ही चाहते हो तो अवश्य तुमको वो मृत्यु मिलेगी, परंतु तुम ये स्वप्न छोड़ देना कि मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा। बड़ा भारी नरसंहार का पाप करने का जो स्थान है वो स्थान दुर्योधन तुमको मिलेगा। तुम तो ऐसा मानते हो कि पांडवों के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, तो इस विषय में यहां जो राजा लोग उपस्थित हैं मैं उन सब से प्रश्न करता हूं, आप सब लोग विचार करो। पांडवों के वैभव से जल भुनकर दुर्योधन तुमने और तुम्हारे इस मामा शकुन ने ही तो जुआ खेलने की खोटी सलाह की। क्या पांडवों ने आकर कहा कि हम जुआ खेलना चाहते हैं? पहले प्रस्ताव तुम्हारा था कि पांडवों का था? और क्या तुमने मामा शकुनी और तुम दोनों ने मिलकर के जुए का पहले षड्यंत्र रचा कि नहीं? मैं मानता हूं जुआ तो भले भले आदमियों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं उनमें कलह और क्लेश की वृद्धि होती है, और तुमने द्रौपदी को सभा में बुलाकर खुल्लम खुल्ला जैसी जैसी अनुचित हरकतें की और बातें कही, अपनी भाभी के साथ ऐसी कुचाल संसार में किसी भी पापी ने भी शायद किया हो। अपने सदाचारी एलोलुप और सर्वदा धर्म का आचरण करने वाले भाइयों के साथ कौन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? उस समय कर्ण, दुशासन और तुमने क्रूर और नीच पुरुषों के समान जो कटु शब्द कहे वो हम सब लोगों के हृदय में शूल के भांति चुभ रहे हैं दुर्योधन। फिर भी हम संधि की बात इसीलिए कर रहे थे किसी प्रकार से शांति रहे। दुर्योधन, क्या तुमने वारणावत में कुंती सहित पांचों पांडवों को फूंक डालने का यत्न नहीं किया था? नीचा सिर क्या करते हो, इस बात का उत्तर दो। उस समय पांडवों को बहुत सा समय अपनी माता के सहित छिपे छिपे एक चक्रा नगरी में रहकर बिताना पड़ा, किसके कारण? क्या वो भी जुआ था? क्या वो जुए के कारण से भेजा वारणावत में? इसके सिवा विष देने और अनेक उपायों से तुमने पांडवों को मारने का प्रयत्न किया, वहां जुआ था पांडवों की तरफ से? तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ, और याद रखना आज तक यदि सफल नहीं हुआ है तो भविष्य में भी सफल नहीं होगा। ऐसी खोटी बुद्धि रखने वाला, कपट व्यवहार करने वाला विजय की आशा रखता है? महात्मा पांडवों के प्रति कोई अपराध, महात्मा पांडवों के प्रति मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये बात बोलते हुए तुझे सभा में शर्म नहीं आती? यदि तुम पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो पापात्मन याद रखो तुम्हें भी ये राजलक्ष्मी नहीं मिलेगी, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुमने कुटिल पुरुषों के समान पांडवों के साथ अनेकों न करने योग्य काम किए हैं, आज भी तुम्हारी उल्टी चाल दिखाई दे रही है। तुम्हारे माता पिता, पितामह, आचार्य, विदुर ये सब तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, संधि की बात तुम्हारे हृदय में नहीं उतरती है। हितेशियों की बात को न मानकर तुम कभी सुख पालोगे असंभव है। तुम जो काम करना चाहते हो वो तो अधर्म है, अपयश का कारण है। तुझे क्या समझाए, तेरे से बात करना ही व्यर्थ है। जिस समय भगवान कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय बीच में ही दुशासन दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगा, राजन आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्ण को बांधकर पांडवों के हाथ में सौंप देंगे। इन लोगों की कुटिलता को समझिए। कौन बोलता है? दुशासन। भाई की बात को सुनकर दुर्योधन का क्रोध बढ़ गया और वह सांप की तरह फुंकार करता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, वाली, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और कृष्ण की तरफ देखने लगा और इन सभी का तिरस्कार करता हुआ चलने के लिए तैयार गया। ना? देखा नहीं इनको, ऐसा तिरस्कार करता हुआ चला गया, वहां से चलने के लिए तैयार हो गया। उसे जाते देखकर उसके भाई, मंत्री और कई राजा लोग भी साथ सभा को छोड़कर चल दिए। तब पितामह भीष्म ने कहा, राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्ट चित्त है, यह दूषित उपायों का ही आश्रय लेता है, इसे राज्य का झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभ ने इसे दबा रखा है। कृष्ण आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं तो समझता हूं अब इन क्षत्रियों का काल आ गया है, इसमें इससे अपने मंत्रियों के सहित ये देखो दुर्योधन का अनुसरण करते हैं, लाज नहीं आती। भीष्म की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, कौरवों में जो वयोवृद्ध है उन सभी की यह बड़ी भारी भूल है कि वे ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त दुर्योधन को बलात् कैद नहीं कर लेते, ये आप लोगों की कमजोरी है। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। इस विषय में मुझे जो बात स्पष्टतया हित की जान पड़ती है वो मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं, आपको यदि वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजिएगा। देखिए भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस कितना दुराचारी और दुर्बुद्धि था, उसने पिता के जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया और अंत में उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। आप लोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन चारों को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, और देश की रक्षा के लिए गांव को, और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए आप लोग भी दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लीजिए, इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियों का कम से कम नाश तो बचे। कृष्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन, राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर ये क्या सुन रहा हो, प्रिय पुत्र दुर्योधन को समझाओ मगर कैद खाने में मत डालो, तुम परम बुद्धिमती गांधारी के पास जाओ, उस गांधारी को यहां लाओ, उसके साथ दुरात्मा दुर्योधन को समझाऊंगा, कैद खाने में तो डालना ठीक नहीं है। तब विदुर जी दीर्घदर्शनी गांधारी को सभा में ले आए। उससे धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र मेरी बात मानता नहीं है, पितामह भीष्म की बात भी नहीं मानता है, हितेशियों की बात न मानकर इस समय उस पापी ने दुष्ट साथियों के साथ सभा का बहिष्कार भी किया है, क्या ये बात उचित है गांधारी? पति की बात सुनकर यशस्विनी गांधारी ने कहा, राजन आप पुत्र के मुंह में फंसे हुए हैं, इसलिए सब लोग काल के अंदर फंस गए हैं, इसमें दुर्योधन का दोष नहीं आपका दोष है। आप बार बार हमको बोलते हैं दुर्योधन बड़ा पापी है, गलत करता है, अच्छा नहीं है, और उसी के बुद्धि के अनुसार चलते भी हैं। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है और आपको मोह ने चंगुल में फंसा रखा है। आप बलात् उसे इस मार्ग से क्यों नहीं हटा देते? नहीं हटा सकते, क्योंकि आपके अंदर पुत्र का मोह है। आपने इस मूर्ख दुरात्मा कुसंगी लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर संभला दी। अब भोगो इसका फल। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इस तरह स्वजनों के फूट पड़ने पर शत्रु लोग आपकी हंसी करेंगे। महाराज देखिए, यदि साम या भेद से विपत्ति टल सकती हो तो बुद्धिमान स्वजनों को दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात युद्ध नहीं करना चाहिए। एक के बदले में आप कितना बड़ा संकट मोल ले रहे हैं। इसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी के कहने से विदुर जी दुर्योधन को फिर सभा में लिवा लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह सर्प के समान फुफकारे भर रहा था। उस समय माता क्या कहती है यह सुनने के लिए फिर राजसभा में भीड़ मच गई। तब गांधारी ने दुर्योधन को झिड़क कर संधि करने के लिए इस प्रकार कहा, दुर्योधन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतान का सबका हित होगा, कुरुवंश का हित होगा, भविष्य में भी तुम्हें सुख मिलेगा। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी जो बात कह रहे हैं उसे तुम स्वीकार न कर महान खतरे को मोल ले रहे हो। यदि तुम पांडवों से संधि करते हो तो बताओ तुम्हारा नुकसान क्या है। सबसे बड़ी बात, पितामह भीष्म की, पिता की, मेरी और द्रोणाचार्य की आज्ञा का पालन होगा, ये लाभ होगा यदि तुम हमारी बात मानोगे, संधि करोगे। केशव कितने प्रयत्न से यहां आए, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, फिर भी वे यहां आकर तुम्हें संधि की बात कहते हैं। केशव की बात का भी तुमने कोई आदर नहीं किया। याद रखो दुर्योधन, जितेंद्रिय पुरुष होता है उसके अंदर सब प्रकार की शक्तियां होती हैं। काम और क्रोध से मनुष्य अर्थ से च्युत हो जाता है। इन दोनों शत्रुओं को जीतकर तो सारी पृथ्वी को जीत लेना आसान होता है। इन दो शत्रुओं को जीतो। जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग ही उद्दंड घोड़े मार्ग ही में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो मनुष्य का नाश करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपने मन को जीतना चाहिए, उसके साथ युद्ध करना चाहिए। तुम पांडवों से युद्ध करते हो, इस प्रकार इंद्रियों के साथ युद्ध करो, मन के साथ युद्ध करो, खोटे भाव है उनके साथ युद्ध करो और उन्हें परास्त करो। इन शत्रुओं को जीते बिना अपने सगे अपने सच्चे धर्मात्मा भाइयों के साथ युद्ध करने में तुम्हारी बुद्धि क्यों फंस रही है दुर्योधन। भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। कृष्ण और अर्जुन को संसार में त्रिलोकी में कोई नहीं जीत सकता। मैं तो तुमको यहां तक कहती हूं, यदि कृष्ण तुम्हारे सभा में विराजमान है तुम्हें आकर अपना शीश इनके चरणों में रख देना चाहिए और कहना चाहिए, कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं मैं आपका हूं, पापी हूं, दुष्टात्मा हूं, जो भी हूं आपका हूं, युद्ध करूं न करूं, संधि करूं न करूं, जैसा आप कहो वैसा करने के लिए तैयार हूं। दुर्योधन इतना करने मात्र से तुम्हारा देखना कैसा ऐश्वर्य और किस किस प्रकार का तुमको संसार में मान मिलता है। तुम राज्य भोगना चाहते हो तो अपना यदि राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का न्यायोचित राज्य दे दो, फिर अपने राज्य के अंदर आपको बड़ा भोग भी मिलेगा। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा है बड़ा अपराध हुआ है। उस संधि को संधि के द्वारा तुम उस अपराध को धो डालो। तुम जो पांडवों का भाग हड़पना चाहते हो वैसी तुम्हारे अंदर शक्ति तो है नहीं, और दुशासन और कर्ण ये तुम्हारी सहायता करेंगे, बड़ी मूर्खता की बात है। तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि मेरी तरफ से युद्ध करके विजय प्राप्त करा देंगे, मैं गांधारी सभा में तुमको सूचित करती हूं कि ये कार्य भी असंभव होगा, ये भी तुमको विजय नहीं दिला सकेंगे। इसलिए दोनों का राज्य प्रेम के द्वारा ही चलना चाहिए, धर्म के द्वारा ही चलना चाहिए। ये लोग भीष्म और द्रोण इस राज्य का अन्न खाने के कारण अपने प्राण भले ही त्याग दें, किंतु राजा युधिष्ठिर की ओर से कभी टेढ़ी दृष्टि करके देख नहीं सकेंगे। तात, संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, माता ने पूरी शक्ति से अपनी बात कही, पर दुर्योधन कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी ऐसे लंबी लंबी सांसें लेता है और कभी कभी वो सभा से बाहर जाने का भी प्रयत्न करता है, और जो ही दुकानदारी के अपने वचन पूरे हुए वो सभा से बाहर भी चला गया, कोई परवाह ही नहीं की। ऐसा लगने लगा कि जैसे ऊसर भूमि पर कोई अमृत की वर्षा हो रही हो। फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन चारों ने मिलकर के एक गुप्त जगह पर बैठकर, उसी महल में एक कोने में जाकर, कोई न देखे वहां जाकर गुप्त सलाह की और आपस में विचार करने लगे। देखो, ये कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर मुझे कैद करना चाहता है, तो ऐसा करो, जब तक ये हमें कैद करे उससे पहले हम ही इन लोगों को बलपूर्वक कैद कर ले, कृष्ण को पता ही न चले, और चुपचाप कैद करके जेल खाने में डाल दें। जब कृष्ण जेल खाने में पड़ा रहेगा, पांडवों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, और हमें तो लगता है कि कृष्ण के न रहने पर ये सब पांडव भी आपस में लड़ लेंगे और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। बड़ा अच्छा मौका है, न तो इसके पास सेना है, न इसके पास कोई योद्धा है, ये तो अकेला आया है, अतः कैद खाने में डाल दो। दूर बैठे हुए सात्यकी इनके इशारों को समझ रहे थे। सात्यकी के अंदर एक विशेषता थी कि कोई आदमी कोई इशारे करता, बात तो सुनाई देती नहीं थी, इशारे करा, इशारे से समझ गए कि कुछ न कुछ भाव है, कुछ न कुछ यहां दुर्भाव है। वे उनके दुर्भाव को ताड़ गए और सभा से बाहर आकर कृतवर्मा से बोले, कृतवर्मन, शीघ्र सेना सजाओ। क्यों, सेना की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें कहता हूं, जब तक मैं इनके कुविचार की कृष्ण को सूचना दूं, तुम स्वयं कवच धारण करके सेना की व्यूह रचना करो, सभा भवन के बाहर द्वार पर आ जाओ। फिर सिंह जैसे गुफा में जाता है, उसी प्रकार सभा में जाकर श्री कृष्ण से सात्यकी ने कुविचार कहा कि आपको कैद करने की तैयारी हो रही है। भगवान सुनकर के मुस्कुराए और थोड़े हंसे भी। वे मुस्कुराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुर से कहने लगे, वाह, खूब अच्छा काम हो रहा है यहां। सत्पुरुषों की दृष्टि में तो दूत को कैद करना धर्म अर्थ काम के विरुद्ध है, किंतु ये लोग मुझे कैद करना चाहते हैं। अच्छा, इसी में इनको समझ लेना चाहिए कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। यदि मुझे कैद खाने में डाल देते हैं तो पांडव हार जाएंगे, चलो हम हारे, और यदि हमको कैद खाने में नहीं डाल सके तो तुमको पांडवों से संधि करनी चाहिए। सात्यकी की बात सुनकर, कृष्ण की बात सुनकर सात्यकी ने कहा, महाराज, कृष्ण को कैद करने की यहां कौन योजना बना रहा है, हम धृतराष्ट्र के पास आए और योजना कोई और चल रही है, जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में लपेटना चाहे, ये आग आपके छाती में लगने वाली है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्या बात है, ऐसा लगता है आपके पुत्र को मौत ने घेर रखा है। इतनी अच्छी सभा, इतनी ज्ञान की चर्चा चल रही है, कितनी बढ़िया बात लेकर श्री कृष्ण यहां आए हैं, और ये लोग आपस में मिलकर कृष्ण को कैद करने की सोच रहे हैं। ये नहीं जानते कि आग के पास जाते ही जैसे पतंग नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही कृष्ण के पास पहुंचते ही इनका खोज मिट जाएगा। कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन कोई बात नहीं, यदि ये क्रोध से भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो ये भी करने दीजिए, कैद करते हैं तो कर लेने दीजिए, हमें बांधने ना चाहते हैं तो बंध जाएंगे। हम तो बचपन में कई बार बंधे हैं, हमारी मां ने हमको कई बार, और यदि कैद खाने में ले जाएंगे तो कैद खाने में ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसा करके तो ये हमारे माता पिता की स्मृति दिला रहे हैं। चलो अच्छी बात है, यदि मैं इस समय इन्हें और इनके अनुयायियों को बांधकर पांडवों को सौंप दूं तो ये तो मुझे कैद खाने में डालते हैं, और मैं इनको यदि बांध करके पांडवों को सौंप दूं तो क्या ये मेरा काम अनुचित होगा। राजन मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देती हूं, दुर्योधन जैसा मुझे कैद खाने में डालने का प्रयत्न करे, खुल्लम खुल्ला करे, मैं यहीं इस सभा के अंदर हूं, कहीं बाहर जाने वाला नहीं हूं। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर उस पापी को समझाओ, दुर्योधन को ले आओ, संभव है इस बारे में उसके अनुयायियों सहित उसे ठीक रास्ते पर नहीं ला रहे, अब उसको ठीक रास्ते पर ले आए, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, दुर्योधन का पतन हो जाएगा, दुर्योधन को बांध करके पांडवों के पास ले जाएगा तो भीम उस दुर्योधन को मसल देगा, जल्दी बुलाओ दुर्योधन को, जल्दी बुलाओ विदुर जी। विदुर जी ने कहा, इतनी जल्दी क्या हो रही है आपको, अरे नहीं तुम जल्दी जाओ। विदुर जी धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर दुर्योधन की इच्छा न होने पर भी उसे फिर सभा में लेकर के आए। उस समय उसके भाई और राजा लोग भी उसके साथ लगे हुए थे। राजा धृतराष्ट्र ने उससे कहा, अरे कुटिल दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम नया नया पाप कैसे सोच रहा है, तू पाप कर्म में क्यों उतारू हो गया है, याद रख ऐसा करेगा तो तू मर जाएगा, तू मर जाएगा तो फिर हम सब मर जाएंगे, तुम जैसा मूड और कुल कलंक पुरुष तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, सत्पुरुष तेरी निंदा करेंगे, कहते हैं तू अपने साथियों के साथ मिलकर के इन कृष्ण को कैद करना चाहता है। मेरी बेटा इन्हें तो इंद्र भी कैद में नहीं कर सकते, इनका काबू पाना बड़ा मुश्किल है, तेरा ये दुस्साहस है तो ये वैसा ही है जैसा मां की गोद में बैठा हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो, मालूम है तुझे केशव के प्रभाव का ज्ञान नहीं है, तेरे जैसे कितने ही इनके सामने आते हैं और जाते हैं, जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता, ऐसे ही कृष्ण को बल से बांधकर कैद खाने में नहीं डाला जा सकता। इसके बाद विदुर जी से बोले, विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो, कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था किंतु सब दानवों के साथ मिलकर भी वो नहीं कर सका, तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है 5 दिन के भी नहीं थे तो पूतना को मारा था, गुडाले भी नहीं चले थे तो बकासुर को मारा था, 6 बरस के भी नहीं हुए थे तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, अरिष्टासुर धेनुकासुर चाणूर केसी और कंस को कैसे धूल में मिला मिला करके उनको मारा था, इसके सिवा जरासंध दंतवक्त शिशुपाल बाणासुर अनेक अनेक राजाओं ने इनके सामने हार मानी है, साक्षात वरुण अग्नि और इंद्र भी इनसे हार मान चुके हैं, अपने अन्य अवतारों में ये मधु कैटप और हयग्रीवादि अनेक दैत्यों को पछाड़ चुके हैं। ये संपूर्ण प्रवृत्तियों के प्रेरक है किंतु स्वयं किसी की भी प्रेरणा से काम नहीं करते, यही सकल पुरुषों के कारण है। ये जो कुछ करना चाहे वही काम अनायास कर सकते हैं। तुम्हें इनके प्रभाव का पता नहीं है, देखो तुम इनका तिरस्कार करने का साहस मत करो। यदि करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा जैसे अग्नि में पतंगा नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम यदि हमें कैद करना चाहते हो तो याद रखो, समस्त पांडव और वृष्णि और अंधकवंशी यादव वो ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर ही। मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो तो शायद तुम्हें मालूम नहीं है मैं यहां अकेला नहीं हूं, और वैसे अकेला दिख रहा हूं। समस्त पांडव वृष्णि तथा अंधकवंशी यादव भी यही है, ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा आदित्य रुद्र वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद है। अच्छा तुम मुझे कैद करोगे? हा हा, ऐसा करके भगवान ने जोर से अट्टहास किया। जो ही भगवान ने अट्टहास किया बस तुरंत उनके सब अंगों में बिजली सी कांति, अंगुष्ठाकार देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल, मुख में अग्निदेव दिखाई देने लगे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वेदेव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ये सब उनके शरीर से अभिन्न मालूम पड़े। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हो गए। उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलधर बलराम बाई ओर थे। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव इनके पृष्ठ भाग में खड़े थे तथा प्रद्युम्न और अंधक आदि वृष्णिवंशी यादव शस्त्र लिए उनके आगे और पीछे खड़े थे। उस समय कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई पड़ी। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग, धनुष, हल, नंदक, खड्ग ये सब लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्ण रंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें निकल रही थी तथा रूम कोपों से माने इन बाणों से सूर्य की सी किरणें निकल रही थी। इस भयंकर रूप को देखकर सब नेत्र बंद कर लिए, कांपने लगे, हड़कंप मच गया। केवल भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, ऋषि, संजय ये अतृप्त नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे थे और इन सब के आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बह रही थी क्योंकि भगवान ने इन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। सभा भवन में भगवान का ये अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, आकाश में फूलों की झड़ी लगाई। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन सारे संसार के हित करता, अतः आप हम पर कृपा कीजिए। कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है आपके दिव्य दर्शन हो रहे हैं, सभा में चुप्पी और शांति है, प्रेम से गदगद भाव से लोग देख रहे हैं, मुझे भी आप ऐसे नेत्र दो, केवल आपके दर्शन करना चाहता हूं, बस आपके दर्शन करने के बाद फिर वापस मुझे अंधा बना देना, आपके दर्शन के बाद मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र तुम्हारे अदृश्य रूप से दो नेत्र हो जाए। जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कृष्ण की स्तुति गाने लगे। सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली मच गई, सब राजा भौचक्के से रह गए। फिर कृष्ण ने उस स्वरूप को तथा अपनी दिव्य अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया। इसके पश्चात वे ऋषियों की आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके चलते ही नारदादि ऋषि भी वही अंतरित हो गए। कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित सब कौरव उनके पीछे पीछे चलने लगे, किंतु कृष्ण ने उन राजाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में ही दारुक उनका दिव्य रथ सजा कर ले आया। भगवान रथ पर सवार हुए, उनके साथ कृतवर्मा भी चढ़ गया। इस प्रकार वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है ये आपने प्रत्यक्ष देख लिया। मैं तो चाहता हूं किसी प्रकार कौरव पांडवों में मेल हो जाए और इसके लिए प्रयत्न करता भी हूं, परंतु मेरी दशा को आपने देख लिया, आप मुझ पर कोई संदेह मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, साथ में द्रोणाचार्य भीष्म विदुर कर्ण और वालिक वे भी थे, राजन जैसे आप मुझे कहते हैं कि मेरी दशा आप देख लीजिए, इसी प्रकार इस समय कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ वो भी आपने देख लिया और वो भी आपके सामने हुआ है कि मंदबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनक कर सभा से चला गया। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने को इस विषय में असमर्थ बताते हैं, ये बात हमें प्रिय नहीं लगती है। अब मैं आज्ञा चाहता हूं और राजा युधिष्ठिर के पास जाता हूं। इस प्रकार आज्ञा लेकर भगवान रथ पर विराजमान हो गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, वाल्लिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गए। उसके बाद उन सब के देखते देखते भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। भगवान ने कुंती के घर जाकर उनका चरण स्पर्श किया तथा कुंती ने भगवान को अपनी भुजाओं में ले लिया। उस समय कुंती के पास भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा, बुआ जी, मैं इस कौरव सभा में पांडवों का और कौरवों का हित करने के लिए आया था। अनेक प्रकार की युक्तियों से मैंने दुर्योधन को खूब समझाया था, परंतु दुर्योधन पर मृत्यु का जाल पड़ा हुआ है। भरी सभा में उसने मुझे कैद करने का विचार किया, परंतु मुझे वो कहां कैद कर सकता था। मैं एक जगह हूं तो मुझे पकड़ा जाए, मैं तो सर्वव्यापक हूं, मुझे कौन कैद कर सकता था। कोई बात नहीं बुआ जी, अब मैं आपसे आज्ञा लेने आपके पास आया हूं। अब मुझे पांडवों के पास जाना है, बताओ आपकी ओर से मैं पांडवों को क्या संदेश दूं। कुंती तो ये सब बातें सुनकर बड़े आश्चर्य में डूब गई और उसने प्रेम से विवल होकर कहा, केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, धर्म की हानि हो रही है, इसलिए धर्म को बचाने के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी भुजा से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचकुंद को सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया, तब उसने अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया। तभी क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर उसने यथावत शासन किया। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है उसका चतुर्थांश राजा को मिलता है। यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है, और यदि अधर्म करता है तो नरक में जाता है, यदि वह दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग करता है तो उसे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से अरुचि पैदा करते हैं और धर्म में लगे रहते हैं। राजा को इतना ही क्रोध करना चाहिए। वास्तव में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों का कारण राजा ही होता है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम संतोष को लिए बैठे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पिता मैंने भी कभी नहीं चाहा। मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, संतानोत्पत्ति, महत्ता, बल और ओज की ही कामना करती रही हूँ। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वो राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से, किसी को मिष्ट भाषण से अपने अधीन करे। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजा पालन करे, वैश्य धन संग्रह करे और शूद्र इन सब की सेवा करे। तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध है, कृषि करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा को भय से बचाने वाले हो, बाहुबली तुम्हारी आजीविका का साधन है। मां बाहु, तुम्हारे जिस पैतृक अंश को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें साम, दान, दंड, भेद या नीति किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम सा पुत्र पाकर के भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रह रही हूं और दूसरों का घर का अन्न खाकर के जी रही हूं। मुझे कोई पूछता है तुम्हारा बेटा धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और उसकी मां आज इस अवस्था में पड़ी है। कृष्ण एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूं, उसमें विदुला और उसके पुत्र का संवाद है। विदुला क्षत्राणी थी। देखो भाई, उबना नहीं, आज हमने पहले ही कह दिया था। विदुला क्षत्राणी थी, बड़ी यशस्विनी थी, तेजस्वी स्वभाव वाली थी, संयमशीला और दीर्घदर्शनी थी। राजसभा में उसकी बड़ी ख्याति थी। किसकी? विदुला की। और शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका औरस पुत्र सिंधुराज से परास्त होकर बड़ी दीन अवस्था में अपने मां के पास आया। मां ने पूछा, बेटा घबराया हुआ क्यों है रे? मां, मैं युद्ध में पराजित होकर जैसे तैसे प्राण बचाकर यहां आया हूं, मुझे युद्ध से घबराहट हो गई। अरे मूर्ख, मेरा पुत्र होकर और तुम युद्ध से भगिया है? तू तो शत्रुओं को आनंद बढ़ाने वाला है, तुझे जरा भी आत्माभिमान नहीं, इसीलिए क्षत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता। मेरी कोख में रहने वाला प्राणों का इतना मोह करे? तेरे अवयव और बुद्धि आदि नपुंसक जैसे हैं। अरे तू प्राण रहते हुए निराश हो गया, यदि कल्याण चाहता तो युद्ध में मर जाता। तू अपने आत्मा का निरादर मत कर, अपने मन को स्वस्थ कर, भय को त्याग दे, कायर खड़ा हो जा, हार कर पड़ा मत रहे। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओं को आनंदित कर रहा है, इससे तेरे सुहृदों को तो शोक बढ़ा रहा है। देख, प्राण जाने की नौबत आ जाए तो पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए, प्राण छोड़ देने चाहिए। जैसे बाज निशंक होकर आकाश में उड़ता रहता है, वैसे तू भी रणभूमि में निर्भय होकर विचार कर। इस प्रकार तू पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा पड़ा हो। बस खड़ा हो जा, शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रहे। साम, दान और भेद रूप, मध्यम, अध्यम, अधम, नीच, कोई भी उपाय उसका आश्रय मत लो और तुम युद्ध का आश्रय लो। शत्रु के सामने डटकर गर्जना करो। वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का मानवोचित पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से उर्ण होता है, वह अपनी निंदा नहीं कराने देता। विद्वान पुरुष फल मिले या न मिले उसकी चिंता नहीं करते, वे तो निरंतर पुरुषार्थ साध्य कर्म करते हैं। उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं। तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर जय लाभ कर, नहीं तो वहां रणभूमि में मर जा, तेरी मृत्यु पर मैं आनंद मनाऊंगी, लेकिन ऐसे जीने पर मेरे मन में बड़ी कष्ट की बात रहेगी। दान तप सत्य विचार विद्या और धन का संग्रह ये हर समय मनुष्य को सुयश नहीं दिया करते, इनका भी एक समय होता है। तू माता का पुत्र नहीं है, माता की विष्ठा है। सच्चा मर्द तो वही है जो विद्या तप ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। तू सोचता है कि मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर लूंगा? यह तो अकीर्ति कारिणी दुखदायिनी कायरों की वृत्ति है। मैंने पुत्र रूप से कलियुग को जन्म दिया है, तू कलियुग जैसा दिख रहा है, तुझे जरा सा भी स्वाभिमान नहीं है, तू व्यर्थ में अपने को पुरुष मानता है। जा किसी पर्वतीय किले में जाकर रहे, मेरे सामने मत रहे। बेटा तेरा नाम तो संजय है, किंतु मुझे तुझमें ऐसा कोई गुण नहीं दिखता है तो संग्राम में जीत प्राप्त करे। तो संग्राम में मरे तो संजय होगा, बड़े भारी विपत्ति में भी जो आदमी उन्नति करता है वो श्रेष्ठ होता है। इस बात को याद रख, विजय की आशा रख। इससे मैं तुझे कह रही हूं कि फिर बराबर कहती रहूंगी। शंबर मुनि का कथन है कि जहां आज भोजन नहीं है न कल के लिए वहां कोई प्रबंध है, जहां आज भोजन नहीं है वहां कल के लिए भी कोई प्रबंध नहीं है। ऐसी चिंता रहती है उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती। अरे आज का दिन आज के लिए ही हुआ है, कल के दिन को आज में क्यों मिलाते हो? आज यदि तुम हार गए तो कल का दिन तुमने देखा है? आशावादी बनो, कर्तव्य की महिमा ही ऐसी है। वो कर्तव्य के अंदर तुम्हारा विजय छिपा हुआ है। हम सदा दूसरों को आश्रय देते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, और आज तू प्राणों को बचाकर यहां आ गई, आ गया। यदि तू यहां प्राण बचाकर रहेगा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यदि तूने जीने का लोभ न किया होता तो तेरे शत्रु परास्त हो गए होते। तू जवान है, विद्याकुल रूप से संपन्न है, यशस्वी है, और मृत्यु से डर गया, और यहां रहकर तू मरेगा तब वो मृत्यु तुम्हारे लिए अच्छी होगी। पुत्र कहने लगा, मां तुम वीरों की सी बुद्धि वाली बात करती हो, लेकिन साथ साथ में कठोर और क्रोध करने वाली बात भी बोलते हो। तुम्हारा हृदय तो लोह का बना हुआ है, क्षत्रियों का धर्म बड़ा कठिन है। दूसरों की माता के समान अथवा जैसी दूसरा कह रही थी, इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हो। और भी तो कई भक्कर के आए हैं, वे तो माताएं कहती हैं कि अच्छा वाह बेटा, तुम्हारा और हमारा मिलना हो गया, नहीं तो तुम वहां मर जाते तो हम किसको मालूम करते। तो वो तो अपने बेटों को गोद में ले रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और तुम मुझे युद्ध में झोंक रही हो, तुम कैसी कठोर मां हो। माता ने कहा, संजय वो वीरों की मां नहीं है, वो कायरों की मां है। कायरों की मां कभी कायरों की मां अपने पुत्रों के अंदर ही जीवन देखती है, और वीरों की मां पुत्र की मृत्यु के अंदर आनंद मनाती है। तुम्हारा ये मार्ग सत्पुरुषों से निंदित है। पुत्र बोला, माता ठीक है, किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उस पर जड़ और मूकवत होकर तुम्हें दया दृष्टि भी तो रखनी चाहिए। माता ने कहा, बेटा जिस प्रकार तू मेरा कर्तव्य बता रहा है, तू मेरे द्वारा कही हुई बात अपने कर्तव्य की तरफ देख। जब तू सिंधु देश के सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा, फिर देखना इसी मुख से तू कैसी प्रशंसा सुनता है। माताजी मेरे पास न तो खजाना है न कोई सहायक है, अब मैं अकेला जाकर युद्ध करूंगा, मेरी कैसे विजय होगी? आप तो बिल्कुल ही विचार नहीं करती हो, मुझे अपनी गोद में बैठने दो ना, मैं आपके साथ रहकर जीना अच्छा मानता हूं। मानेगा, बेटा मेरी गोद कायरों के लिए नहीं है, आरंभ से ही मैंने कभी वैभव को महत्व नहीं दिया है। वीर लोग धन संपत्ति को अपने पीछे छोड़ करके, प्राणों का मोह भी पीछे छोड़ करके आगे बढ़ा करते हैं, ऐसे पुरुष वीर होते हैं। जाओ, तुम्हारे लिए यहां मेरे यहां कोई स्थान नहीं है। राजा संजय छोटे मन का आदमी था, किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उसके मुंह में जो वृत्ति थी वो हट गई और उसने कहा, मेरा ये राज्य शत्रु रूप जल में डूब गया है और माता अब मुझे इसका उद्धार करना है, या तो मैं अपने राज्य का उद्धार करूंगा और या रणभूमि में प्राण दे दूंगा, मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुम्हारी जैसी पथ प्रदर्शिका माता मिली, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बराबर तुम्हारी बात को सुनना चाहता था। इसी बीच में कुछ कहकर मैं मौन हो जाता था, तुम्हारे वचनों से मुझे उत्साह मिला है और उनसे मुझे अभी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं शत्रु दमन करके ही अब आपको अपना मुंह दिखाऊंगा। इस प्रकार घोड़े पर चढ़कर चला गया कृष्ण और उसके बाद वो अंत में विजय होकर के लौटा। इसलिए तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे आकाशवाणी हुई थी, कुंती तेरा ये पुत्र इंद्र के समान होगा, ये भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और शत्रुओं को व्याकुल कर देगा, ये सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण की सहायता से सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक अंश को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। कृष्ण, मेरी भी ऐसी इच्छा है, ये आकाशवाणी सत्य हो। प्रारंभ में तो मैं डरती थी कि मेरा अर्जुन मेरे ही कुरुवंश को क्यों नष्ट करेगा, लेकिन जो जो इस वंश के मैंने कृत्य देखे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम अर्जुन और भीमसेन से कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का समय आ गया है। द्रौपदी से फिर कहना, बेटी तू बहुत उच्च कुल में पैदा हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है, ये तुम्हारे ही योग्य है। नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करना। कृष्ण, मुझे राज्य जाने का दुख नहीं, जुए में हारने का दुख नहीं, पुत्रों को वनवास का कोई दुख नहीं, किंतु मेरी युवती पुत्र वधु ने सभा में रुदन करते हुए दुर्योधन के कुवचन सुने थे, वे मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े अपमानजनक शब्द थे, तुम उन्हें उनकी याद दिलाना और कहना कि वो दुख अभी तुम्हारी मां कुंती के हृदय से निकला नहीं है। फिर द्रौपदी, पांडव और उनके पुत्रों से मेरा आशीर्वाद बोलना और उन्हें बार बार मेरा कुशल क्षेम सुनाना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों का यश बढ़े, उनके मार्ग में कोई बाधा न हो, ऐसा तुम उनका साथ दो। कुंती ने प्रणाम किया और उसके बाद प्रदक्षिणा कर कुंती को प्रणाम कर उसकी परिक्रमा की। बाहर आए, भीष्म आदि प्रधान प्रधान कौरवों को विदा किया तथा कर्ण को रथ में बैठाकर सात्यकी के साथ चल दिए। भगवान के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में अनेकों अद्भुत आश्चर्यजनक बातें करने लगे। दुर्योधन ने देखा, कृष्ण ने आज कर्ण को बहुत प्यार से अपने रथ पर बैठाया है, कैसे मुस्कुराहट से कर्ण की ओर देख रहे हैं और कर्ण के कंधे पर हाथ डालकर कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं। क्या बात है, कर्ण को कैसे ले गए, इस प्रकार से वो देख रहा है। और फिर घोड़े हांक दिए गए और इतनी तेजी से घोड़े चले कि लंबे से लंबे मार्ग को तय करके और वे भगवान उपप्लव्य नामक स्थान पर पहुंच गए। बस अब 10 महीने का मध्यम विश्राम है। कौन जिए कौन मरे पता नहीं है। महाभारत की कथा तो अमर है, यहां तक की कथा हो चुकी है। भगवान सब बात करके उपलब्धि स्थान पर आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।